अध्याय सात, चीन में वित्त साम्राज्यवाद, फाइनेंस इंपेरियलिज्म इन चाइना। यह अध्याय शर्मिला श्रीवास्तव, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के हंस राज कॉलेज के प्राध्यापिका हैं, और अर्चना ओझा, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कमला नेहरू कॉलेज के प्राध्यापिका हैं, के द्वारा लिखी गई है। 16वीं शताब्दी में यूरोप में पूंजीवाद के विकास के साथ ही औपचारिक विस्तार की प्रक्रिया आरंभ हुई। 19वीं शताब्दी में दूसरे उत्तरार्ध को नव साम्राज्यवाद, नियो इंपेरियलिज्म काल कहा जाता है, जो कि यूरोपीय विस्तारवादी नीति का एक विशेष चरण था। सर्वमान्य सिद्धांतवादियों, क्लासिकल थ्योरिस्ट का ध्यान यूरोप और साम्राज्यवाद के उदय की ओर अधिक रहा है, किंतु अब विद्वानों का ध्यान साम्राज्यवाद के कारणों की बजाय उसके प्रभाव तथा प्रक्रियाओं पर अधिक केंद्रित हो रहा है। 19वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में दूसरी औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई, जो गुणात्मक तथा परिमाणात्मक रूप से पहली औद्योगिक क्रांति से काफी भिन्न थी। इस दूसरे चरण की क्रांति में विज्ञान और तकनीकी तरीकों का उपयोग अधिक किया गया था। बहुत अधिक संख्या में नए नए राष्ट्र औद्योगिक विकास करने लगे। नए उद्योगों की निर्भरता पूंजी पर अधिक थी, जिससे नए प्रकार के कच्चे एवं उपभोक्ता माल की बाजार में मांग बढ़ती जा रही थी। औद्योगिक संस्थाएं अधिक बड़ी व जटिल होने लगी, क्योंकि विशाल औद्योगिक इकाइयों का विकास हो रहा था। 19वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में कुछ ऐसी कंपनियों के विकास की प्रक्रिया आरंभ हुई, जिनमें अधिक से अधिक पूंजी का केंद्रीयकरण किया गया था। इसके अतिरिक्त बाजार प्रणाली को और अधिक सुचारू तथा तीव्र बनाया गया, तथा संचार के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व विकास हुआ। उदाहरणतया रेल मार्गों के निर्माण तथा जहाजरानी उद्योग की स्थापना से भारी माल को कम कीमत पर भेजने का प्रबंध किया गया। तार के माध्यम से भी संचार माध्यमों को बढ़ावा मिला। इसी समय यूरोप में जनसंख्या में वृद्धि हुई। पूंजीवाद का विकास यूरोप के सभी देशों में समानांतर नहीं हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप पुराने तथा नए औद्योगिक राष्ट्रों के बीच उपनिवेशों और नए बाजारों को प्राप्त करने के लिए नए औपनिवेशिक संबंध प्रारंभ हो गए थे। परिणाम स्वरूप विकसित राष्ट्रों में नए सीमा शुल्क नियम बनाए गए, ताकि प्रत्येक राष्ट्र अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा कर सके तथा अपने औपनिवेशिक क्षेत्रों में अपने प्रभाव को बनाए रख सके। सीमा शुल्क की इस दीवार से ही विकसित राष्ट्रों के बीच आर्थिक संघर्ष आरंभ हुआ, जिसने आगे चलकर सैन्य संघर्ष का रूप ले लिया। इस नव साम्राज्यवाद के उदय के अनेक कारण बताए जाते हैं, जिनमें सामाजिक डार्विनवाद, सोशल डार्विनिज्म, विकासशील औद्योगिकरण, सुरक्षात्मक बाजारों के लिए संघर्ष, कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए संघर्ष, यूरोप की बढ़ती हुई जनसंख्या, राष्ट्रवादी तत्वों का बढ़ता हुआ प्रभाव तथा सैन्य व औपनिवेशिक संघर्ष प्रमुख हैं। जो विद्वान साम्राज्यवाद के उदय को राजनीतिक घटना मानते हैं, उनकी दृष्टि में यह राष्ट्र के विस्तार, राज्य को गौरवमय बनाने का प्रयत्न तथा बृहत राष्ट्रवादी उन्माद का प्रतीक था। लेकिन साम्राज्यवाद को केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह पश्चिमी यूरोप के आर्थिक विकास के एक विशेष चरण में जुड़ा था। 1902 ईस्वी में जे हॉबसन ने साम्राज्यवाद एक अध्ययन, इंपेरियलिज्म ए स्टडी नामक एक किताब लिखी, जिसमें पहली बार किसी अर्थशास्त्री ने साम्राज्यवाद को एक नए ढंग से समझने का प्रयत्न किया था। वैसे तो हॉबसन के सिद्धांत को आगे चलकर कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, किंतु फिर भी इसे आधुनिक दृष्टि से साम्राज्यवाद के अध्ययन का सूत्रपात माना जाता है। हॉबसन साम्राज्यवाद के उदय का आर्थिक कारण बताते हुए कहते हैं कि इसकी शुरुआत यूरोप में उन वित्तीय संस्थाओं और केवल कुछ सीमित वर्गों के लोगों के द्वारा की गई, जिनके पास धन की बहुतायत थी तथा वह बहुत कम समय में अधिक मुनाफा प्राप्त करना चाहते थे। औद्योगिक क्रांति के दूसरे चरण में नए धन की शुरुआत हुई, जिसका प्रयोग आधुनिक जहाजों तथा शस्त्रों के निर्माण में किया गया। इन दोनों तत्वों के सहारे वित्तीय वर्गों ने अपने राजनीतिक तथा सामाजिक संबंधों में वृद्धि करके अपने सरकारों पर अपने हितों की रक्षा के लिए अर्धविकासशील राष्ट्रों पर पूंजी निवेश के नए क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दबाव डालना शुरू किया। अपने सामाजिक शक्ति के द्वारा इस वर्ग ने धर्म प्रचार को, सैनिकों और राष्ट्रवादियों को साम्राज्यवाद के गौरव को बढ़ाने के लिए जानबूझकर बढ़ावा दिया। इस प्रकार हॉब्सन के अनुसार कुछ पूंजीपति वर्गों के हितों को सुरक्षित रखने तथा बढ़ने के लिए जनमानसिकता के आधार पर साम्राज्यवाद का विकास किया गया। हॉब्सन के बाद साम्राज्यवाद पर दूसरा सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत व्लादिमीर लेनिन का माना जाता है, जिन्होंने 1916 में प्रकाशित अपने लेख साम्राज्यवाद एकाधिकार पूंजीवाद का उच्चतम पड़ाव इम्पेरियलिज्म द हाइएस्ट स्टेज ऑफ मोनोपोली कैपिटलिज्म में इसके विशेष रूप से व्याख्या की है। लेनिन के कथनानुसार 19वीं शताब्दी के अंत तक पूंजीवाद का विकास एक विश्वव्यापी प्रणाली के रूप में हुआ था, जिसके अंतर्गत कुछ कम विकसित राष्ट्रों ने औपनिवेशिक आक्रमणों का दौर शुरू कर दिया था। 20वीं शताब्दी के आरंभ में साम्राज्यवाद का परिवर्तित रूप देखने को मिलता है, जिसमें मुक्त प्रतिस्पर्धा के स्थान पर एकाधिकारी प्रवृत्तियों की शुरुआत हुई थी। जर्मनी तथा अमेरिका में उद्योगों में एक प्रकार के संकेंद्रण तथा सम्मिश्रण के द्वारा उत्पादन के सभी चरणों को नियंत्रित किया जा रहा था, या फिर सहायक उद्योगों को अपने अधिकार में किया जा रहा था। इसी प्रक्रिया से उत्पादक गुटों तथा एकाधिकारी कंपनियों की संख्या में वृद्धि हुई, जो कि बाजारों को आपस में विभाजित करके व कच्चे माल के स्रोतों को अपने नियंत्रण में करके माल की कीमतों को अपने इच्छानुसार तय करते थे। बैंकों की प्रवृत्ति में भी परिवर्तन आया। पहले ये छोटे पूंजी निवेश के साधन थे, लेकिन बाद में औद्योगिक क्रांति के विस्तार से इन बैंकों में पूंजी की मात्रा बहुत बढ़ गई थी। इस नगद राशि के द्वारा बड़े उद्योग प्रभावी हो गए तथा इसी को लेनिन ने वित्त पूंजी फाइनेंस कैपिटल का नाम दिया है। पृष्ठ संख्या 104। लेनिन का यह मानना था कि पूंजीवाद के विकास के साथ साथ ही साम्राज्यवादी तत्वों का भी विकास हुआ था, क्योंकि अर्धविकसित क्षेत्रों में पूंजी का निर्यात करके नए वित्तीय वर्गों ने और अधिक मुनाफा प्राप्त करने के तरीके ढूंढ लिए थे। इसके द्वारा उपनिवेशों की स्थापना तथा उनके शोषण की प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसके कारण विभिन्न विकसित राष्ट्रों में पहले संघर्ष तथा बाद में अधिक क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए युद्ध हो गए, जो पूंजीवाद के पतन का कारण बने। इस प्रकार साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम तथा अंतिम सीमा मानी जाती है। साम्राज्यवादी सिद्धांत के एक और प्रसिद्ध विद्वान जोजफ शूमपीटर को माना जाता है। उनके विचार में पूंजीवाद तथा साम्राज्यवाद का आपस में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि साम्राज्यवाद के विकास में जो उग्र तत्व विद्यमान थे वह सामंतवादी थे। इसके अतिरिक्त उनका कहना है कि साम्राज्यवाद के उदय में सामरिक तत्व अधिक महत्वपूर्ण थे, न कि आर्थिक कारण। माओ तजतुंग के अनुसार वित्त साम्राज्यवाद एक विनाशकारी शक्ति थी, जिसने चीन की आत्मनिर्भर सेल्फ सफिशियंट राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ही नहीं बल्कि हथकरघा उद्योग को भी नष्ट कर दिया था, जिसके कारण शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर चीन में विदेशी साम्राज्यवाद के विकास और विस्तार में अधिक सहायता प्रदान की। विदेशी साम्राज्यवादियों ने चीन की सामंती शक्तियों जैसे कंपेदोरों, सुदखोरों और भूस्वामियों के साथ मिलकर चीन के पूंजीवादी विकास में अवरोधक पैदा किया। इन सब का परिणाम यह हुआ कि चीन के उद्योगों और उत्पादक शक्तियों के विकास में छोटे और बड़े विदेशी उद्योगों ने दबाव डालकर उसे विकसित नहीं होने दिया। माओ की मार्क्सवादी प्रतिक्रिया से थोड़ा हटकर कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकारों जैसे तिंग मिंगनान, चांग चनलान और शिया लियांग त्साए के अनुसार वित्त साम्राज्यवाद के आने से चीन की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था टूटती चली गई, क्योंकि विदेशी शक्तियों ने अपने अपने क्षेत्रों में चीन पर अनेक पाबंदियां लगा रखी थी। चीन सरकार के पास तटीय व्यापार, खनन, बैंक मुद्रा, तथा अंतर्राज्यीय नौकायन के अधिकार नहीं रह गए थे। इस प्रकार चीन के आर्थिक जीवन को प्रतिकूल स्थितियों में परिवर्तित करके उसे नष्ट कर दिया गया था। असमान संधि प्रणाली ने विदेशी उद्योग तथा वाणिज्यिक साम्राज्यवाद का विकास किया, जो आगे चलकर रेल मार्गों के निर्माण तथा जहाजरानी उद्योगों के कारण वित्त साम्राज्यवाद में विकसित कर दिया गया। वित्त साम्राज्यवाद के द्वारा विदेशी शक्तियों ने चीन के आंतरिक क्षेत्रों में प्रवेश प्राप्त किया। शोषक विदेशी उपस्थिति हथकरघा उद्योग एवं कृषि अर्थव्यवस्था के पतन का कारण बनी। असमान संधियों के आर्थिक प्रभावों के अतिरिक्त इसने चीन के सामाजिक, नैतिक तथा मनोवैज्ञानिक स्वरूप पर भी गहरी छाप छोड़ी। सुन यात सेन के अनुसार वित्त साम्राज्यवाद के द्वारा चीन का जो आर्थिक शोषण किया गया था, वह राजनीतिक शोषण से कहीं अधिक विनाशकारी तथा भयंकर था। विदेशी माल, कागजी मुद्रा तथा सीमा शुल्क के आर्थिक प्रवेश से न केवल ग्रामीण क्षेत्र का पतन आरंभ हुआ, अपितु साथ ही प्रतिवर्ष लगभग 120 करोड़ तायलों का चीन से दोहन किया जाता था। वित्त साम्राज्यवाद को विदेशी सरकारों का सहयोग प्राप्त था, इसलिए चीन का एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र के रूप में पतन हुआ था। उसे बेरोजगारी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। विदेशी आर्थिक पूंजी को प्रवेश करवाने के लिए ही रेल मार्गों तथा अंतर्राज्यीय जहाजरानी उद्योगों का विकास किया गया था, जिससे चीन के उद्योगों को समाप्त करके चीन को विदेशी माल का आश्रित बना दिया जाए। इस प्रकार विदेशी चीन के जीवन और अर्थव्यवस्था को नष्ट करके मुनाफा प्राप्त कर रहे थे।